चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दित्तु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवलीभणिदम्।
ये कुंदकुंद आचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के पुण्य पाप अधिकार के हम 150 नंबर की गाथा को देख रहे हैं। देखो, इस गाथा में ऐसा कहा गया था कि ये जिनेंद्र भगवान का स्वयं का यह वचन है, आगम वचन है, कि ये दोनों जो भाव है कर्म, ये निषेधने योग्य है। क्यों साहब निषेधने योग्य है? तो कह रहे हैं कि दोनों ही बंध के हेतु हैं, यानी दोनों से ही बंध ही होने वाला है, होता है, इसलिए वे निषेध्य है, निषेधने योग्य है, ऐसा आगम वचन है। ये आगम वचन का अर्थ क्या किया है कि जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है उसके अनुसार ही गणधर देव उसकी रचना करते हैं और वही बात परंपरा से आचार्यों के द्वारा बाद में लिखित रूप से हुई है, तो हम तो आगम यानी शास्त्र को ही आगम कहेंगे, तो वो बात यहाँ नहीं है। आगम तो जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है उसको भी आगम कह सकते हैं। देखो, हम आपको मालूम है ना कि हमारे लिए देव, गुरु और शास्त्र तीनों ही इक्वली पूजनीय है, यानी इन तीनों का ही अष्ट द्रव्यों से पूजन किया जाता है। कौन कौन बताया? देव, गुरु और शास्त्र, या देव शास्त्र गुरु, जैसा आप लो ख्याल में। तो ये देव जो है वो तो अरहंत और सिद्ध की बात है, और जो शास्त्र जो कहा गया है वह तो आगम वचन है, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि है। हम तो शास्त्र कहने से एक शास्त्र रख दिया और हम उसके पूजा की, वो तो अभी तो हम उसकी पूजा करते, वो तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें जिनेंद्र भगवान की बात लिखी है, तो जितने जिनेंद्र भगवान हमारे लिए आदरणीय है, प्रिय है और रिस्पेक्टेबल है, उतना उस शास्त्र का भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बात मुख्य है। वैसे गुरु भी तो है ही है, क्योंकि पंच परमेश्वरी में इनके सबके नाम आते हैं। हाँ,
ये लौकिक गुरु या हमें जो जिसने शास्त्र पढ़ाए, ग्रंथ पढ़ाए, उस गुरु की यहाँ बात नहीं है। चौथे पांचवे गुणस्थान वर्ती भले वो सम्यक दृष्टि है, उन्होंने देशना दी है, परंतु वो
गुरु
अष्टद्रव्य से पूजने योग्य नहीं है। ये पर्याय का भी विवेक होना चाहिए। जो चरणानियोग की जो आज्ञा है, मुनि जो है छठे सातवें गुणस्थान वर्ती या ऊपर के, उन्हीं के ये अष्टद्रव्यों से पूजा भक्ति हो सकती है। तो देव शास्त्र गुरु में उन गुरुओं की, उन मुनियों की बात है।
यहाँ तो बात निकली है अपनी आगम वचन। मुझे बिल्कुल याद है, बहुत गर्मी के दिनों में मई महीने में, ये अपने मेट्रो थिएटर उसके बाजू में कौन सा आजाद मैदान है ना, उधर स्वामी जी के प्रवचन होते थे। वह भी दोपहर में बिल्कुल 3 बजे से 4 बजे का टाइमिंग, इतनी गर्मी, इतना ये, और वहां तो ये हजारों लोग आते थे, सबके हाथ में कहां समयसार शास्त्र देवे, समयसार पढ़ाते थे, तो जो मतलब करंट जो टॉपिक चलता होगा उसके ऐसी छोटी छोटी पुस्तिका बना के ऐसे 30 चल्ले पन्ने की, 15 पन्ने की, 20 पन्ने की वो बना के सबको देते थे, तो लोग उसको लेके ऐसा हवा खाते थे, पंखे लगे रहते थे, फिर भी गर्मी इतनी और अधिक लोग एक साथ, तब स्वामी जी बहुत बहुत दुख प्रदर्शित करते थे, तमे शू करो छो, जिनवा नहीं थी, क्या बोलते हैं हम लोग, पंखों करे हवा करे जो भी होगा।
और स्वामी जी के पीछे कभी पंखा नहीं होता था, हाँ, स्टेज पर कोई पंखा अलाउड नहीं था,
उनके नहीं होते थे,
वो कभी यूज नहीं करते थे पंखे।
और जब प्रवचन हो जाए पूरा जो उनके जो धोती रखते थे ऊपर पूरी गीली हो जाती थी, कभी उन्होंने पंखा नहीं लगाया। अब अपनी बात क्या है कि यहाँ जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो इतनी महत्व की है, कहो या जिसको हम कहते हैं कि आदरणीय है, उसका हमें विचार ही नहीं है, इसलिए हमारे यहां से उसकी अवहेलना होती है, अपमान होता है, अनादर होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। अभी अपनी बात क्या है, देखो देखो ये पेज नंबर 66 पर हम आए हैं, यहां दूसरा पैराग्राफ या तीसरा जो भी आप मान लो, हवे कहे छे एवू जे आगम वचन छे ते सामान्यपने रागीपना ना निमित्तपना ने लीधे शुभ ने अशुभ बनने कर्म ने अविशेषपने, अविशेषपने का अर्थ विदाउट एनी डिफरेंसिएशन। अभी आप हिंदी में गुजराती में कर लेना, हाँ, यानी भेद पाड़िया वगर, विशेषपना यानी जो अलग जुदापना है ना, तो वो उसको दोनों में कोई तफावत किए बिना बंधना कारण तरीके सिद्ध करे छे अने तेथी बन्ने कर्म ने निषेधे छे। ये अभी हमने उसमें पहले शुरुआत में ही देखा था ना, इंटर इन्वर्टेड कॉमा है, इसका अर्थ है कि टीका में वो बात आई है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कहना चाहते हैं, आहा शू कहे छे शुभ कर्म हो के अशुभ कर्म हो एमा जे प्रेम छे। अभी ये कर्म का अर्थ शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो ये लेना हो, और एमा जे प्रेम छे एना कारणे अर्थात रागीपना ना कारणे अविशेषपने एटले के शुभ भलू अने अशुभ पूरू एवो भेद पाड्या विना बन्ने ने बंधना कारण तरीके सिद्ध करे छे। तो कहे कौन सिद्ध करे छे, कहे के आगम वचन अर्थात भगवान जिनेन्द्र देवनी वाणी, भगवान जिननु वचन एम सिद्ध करे छे के पुण्य ने पाप बन्ने भाव आ गए ना, ये जीव के परिणाम लिए ना, बन्ने भाव सामान्यपने बंधनु कारण छे। अभी सामान्यपने यानी दोनों इक्वली समान रूप से, तेथी आगम वचन पुण्य पाप ना बन्ने भावों नो निषेध करे छे। ये तो कभी जिसको पुण्य की विशेष रुचि है ऐसे जीव को तो ये बात थोड़ी सी कठिन लगेगी, नाराजी आएगी, लेकिन जो है वो बताएंगे स्वामी जी। प्रश्न, तो शास्त्र मां पुण्य भाव ने साधन कहूं छे ने, आ कहूं छे, पण ये तो निमित्तनु के सहचरनु ज्ञान करावा त्या व्यवहार नहीं थी कहूं छे। आचार्य जैसेन नी टीका मां तथा परमात्म प्रकाश मां व्यवहार रत्न थई थी निश्चय थाय एम आवे छे। दो बातें बताई, एक जैसेन आचार्य की टीका में भी ये बात है और परमात्म प्रकाश में भी ये बात है, परंतु ए व्यवहार नहीं नु कथन छे, निश्चय रत्न त्रय जेने प्रकटे छे तेने निश्चय रत्न त्रय जेने प्रकट छे તેને બાહ્ય વ્યવહાર એટલે વ્યવહાર રત્નત્રય કેવો હોય છે તે બતાવવા શાસ્ત્રમાં એવા કથન આવે છે. તો એ શાસ્ત્રમાં એને અભી એ જો પુરુષાર્થ સિદ્ધિ કોણ સા પરમાત્મ પ્રકાશ જો હૈ ઓર જો જયસેન આચાર્ય કી જો ટીકા હૈ ઉનમે યે એસા કથન ક્યું આયા ઉસકા વિશ્લેષણ કિયે. પણ તે પુણ્યભાવ યથાર્થ સાધન છે એમ ન સમજવું, ખરેખર તો નિશ્ચય ધર્મ પ્રકટ ન હોય તેને તો બાહ્ય વ્યવહાર હોતો જ નથી. એકલા બાહ્ય વ્યવહાર વાળાને તો ગાથા 413માં ટીકામાં, યાની એ સમયસાર કી 413 નંબર કી ગાથા હૈ, એમાં વ્યવહાર મૂળ કયો છે, વો ક્યા કહા હૈ, વો અભી યહાં કોટ કિયા હૈ, તે વો અનાદિ રૂઢ વ્યવહારમાં, યાને વ્યવહાર તો અનાદિ સે ચલ રહે હૈ ઓર ઉસી મેં જો આરૂઢ હો ગયા હૈ, તે વો અનાદિ રૂઢ વ્યવહારમાં મૂળ વર્તતા થકા, પ્રૌઢ વિવેકવાળા નિશ્ચય પર અનારૂઢ વર્તતા થકા, યાને નિશ્ચય જિનકે હૈ નહીં સિર્ફ વ્યવહારમાં જો અટકે હૈ, પરમાર્થ સત્ય ભગવાન સમયસારને દેખતા અનુભવતા નથી, યે આત્મા કો ક્યું નહીં પહેચાન રહે, ક્યું નહીં ઉસકા અનુભવ કર રહે હૈ, તો યે તો બાહ્ય શુભ રાગો મેં હી અટકે હુએ હૈ, યે બાત યહાં બતાના ચાહતે હૈ. એમ ત્યાં કહ્યું છે, જ્ઞાની જે નિશ્ચય પર આરૂઢ છે તેને જે વ્યવહાર હોય છે તેનો માત્ર જાણનાર છે, કરતા નથી. ક્યાં કહે રહે, દેખો જ્ઞાની કે દો બાતે બતાઈએ કે નિશ્ચય પર આરૂઢ છે, યાને ઉસને અપને આત્મા કા અનુભવ કિયા હૈ. દૂસરી બાત ક્યા હૈ, તેને વ્યવહાર હોય છે, વ્યવહાર હોય છે કા અર્થ ક્યા હો ગયા, કે ઉનકે ભી શુભ પરિણામ હૈ, પરંતુ ઉનકા ક્યા હૈ, તેનો માત્ર જાણનાર છે, કરતા નથી. આહા હા, રાગ વિનાનું પોતાનું જે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે તેનું સંચેતન અને અનુભવન કરનાર જ્ઞાની વિરાગી છે, અને તેને જે પર્યાયમાં રાગ છે તેને માત્ર સાક્ષી ભાવે જાણે જ છે, કરતો નથી. જ્યારે વ્યવહાર કરવાથી ધર્મ થાય છે એમ માનનાર, વ્યવહારમાં જ તલ્લીન એવો રાગી વ્યવહાર મૂળ છે, તે ધર્મને પામતો નથી. એ આ જો 413 કા જો કોટેશન દિયા હૈ ઉસકા યહાં ઉન્હોને એક્સપ્લેનેશન કિયા હૈ. અહીં આચાર્ય કુંદકુંદ દેવ આગમ વચનને પ્રસિદ્ધ કરીને કહે છે કે રાગની રૂચિવાળા બંધાય છે અને રાગની અરૂચિવાળા કોણ છે, તે વિરાગી છે, એવા બંધાતા નથી. હરિગીતમાં છે ને કે જીવ
રક્ત બાંધે કર્મને
વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત મુખાય છે. બોલ.
આમ છતાં અભી એ ગાથા કી બાત હૈ ને, હરિગીત ગાથા કા જો ટ્રાન્સલેશન ગુજરાતી હમને પઢા થા ઉસકો. આમ છતાં આગમના વચનને ન સમજે અને પુણ્યથી ધર્મ થાય, ભગવાનના સ્મરણ સ્તુતિ ભક્તિ વંદના ઇત્યાદિ કરતા કરતા ધર્મ થાય એમ માને. આગમ કી બાત કો સમજતે નહીં ને. અભી જો બતાયા થા જો જયસેન આચાર્ય કી ટીકા મેં યા પરમાત્મા પ્રકાશ મેં ભી વ્યવહાર કો સાધન કહા હૈ, પરંતુ વો ઉપચાર કા કથન હૈ, નિશ્ચય કા કથન નહીં હૈ. હમ તો ક્યા કહેતે હૈ, અભી તો હમે ઇતને અભી તો બાત સમજ મેં આતી હૈ ના, હમકો નિશ્ચય કે કથન કી ઇતને આદિ હો ગયે, કઈ વ્યવહાર કા કથન આતા હૈ, નહીં નહીં યે તો જ્ઞાની નહીં હો સકતે લિખના, હમ તો ઉસકી કસોટી કરના નિકલતે, એસી બાત નહીં હૈ. કિસ અપેક્ષા સે કિસ નય સે કૈસા કથન કિયા હૈ વો હમે સમજના હૈ. તો યહાં કહેતે આગમના વચનને ન સમજે અને પુણ્યથી ધર્મ થાય, ભગવાનના સ્મરણ સ્તુતિ ભક્તિ વંદના ઇત્યાદિ કરતા કરતા ધર્મ થાય એમ માને અને નિરૂપે, તેને આગમ વચન ક્યાં છે? એ તો સ્વચ્છંદીનું વચન છે, કેમ કે તેને આગમ વચનનું શ્રદ્ધાન જ નથી. ત્રણ લોકના નાથ અરહંત દેવે તો દિવ્ય ધ્વનિમાં એમ કહ્યું છે કે શુભ અને અશુભ બંને ભાવ અવિશેષપણે, એની ઉસમે કોઈ તફાવત નહીં હૈ, દોનો હી બંધ કે કારણ હૈ, પુણ્ય સે કમ બંધ હોતા એસી બાત નહીં હૈ, દોનો દોનો સે હી બંધ તો હોતા હી હૈ, તો અવિશેષપણે બંધના કારણ છે, માટે નિષેધવા યોગ્ય છે. હમને કહે ને ઉસકો સાત તત્વ મેં હમને ઉસકો હેય કહા હૈ, આશ્રવ કો હેય કહા થા, પુણ્ય પાપ આશ્રવ હૈ, વો દોનો હી હેય હૈ. ભાઈ આ તો વીરનો માર્ગ છે, તે સાંભળીને જેના કાળજા કંપી ઉઠે છે એવા કાયરના આમાં કામ નથી. પુણ્ય કો નિષેધવા યોગ્ય હૈ એસા કહેને પર એ તો એકદમ ધ્રુજી જાય છે અંદરથી, હા કાળજા કંપી જાય છે. શ્રીમદે કહ્યું છે ને, વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસમૂળ, ઔષધ જે ભવ રોગના કાયરને પ્રતિકૂળ. એ જો એ તો અર્થ સમજમાં આવતા હૈ, વીતરાગના વચનો શાંતરસ વીતરાગ રસના પ્રેરનારા છે અને તે ભવરોગને મટાડનારા મહાઔષધ છે, પરંતુ શુભભાવમાં જ રક્ત એવા કાયરોને તે પ્રતિકૂળ પડે છે. કાયર કહા ઉનકો કે વો વચન સુનને મેં ભી વો ઉતને ધીર નહીં હૈ, વીર નહીં હૈ. શાસ્ત્રમાં શુભભાવના એકાંત પ્રેમીને વીર્યહીન નપુસક કહ્યો છે, કેમ કે એને ધર્મની પ્રજા પેદા થતી નથી. જીસકો શુભ કા પ્રેમ હૈ ઉસકો ધર્મ કી પ્રજા એને ધર્મ કી પર્યાય પ્રકટ નહીં હોતી હૈ. જેમ પાવૈયાને પ્રજા ન થાય, પાવૈયાને નપુસક હિજડા શાસ્ત્ર મેં ઉસકો ક્લિબ કહા હૈ ના, ક્યા નામ આતા હૈ,
ક્લિબ
ક્લિબ. હા, જેમ પાવૈયાને પ્રજા ન થાય તેમ રાગના રૂચિવાળા નપુસકોને ધર્મની પ્રજા ન થાય. આત્માની સુરતાલી શક્તિઓમાં એક વીર્ય શક્તિ કહી છે, આત્મ સ્વરૂપની રચનાના સામર્થ્યરૂપ વીર્ય શક્તિ છે. વીર્ય શક્તિ કા અર્થ ક્યા હૈ, આત્મ સ્વરૂપની રચના કા જિસમે સામર્થ્ય હૈ એસી વીર્ય શક્તિ હૈ. આ વીર્ય શક્તિનું કાર્ય શું, કે સમ્ય દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની નિર્મળ પર્યાયને રચે તે એનું કાર્ય છે. તમે દેખતા ને વો પુરુષાર્થ વીર્ય ગુણ કી પર્યાય હૈ, વો ક્યા કરતા હૈ, એ નિર્મળ પર્યાય કી રચના પર્યાય મેં હોતી હૈ. શુભભાવની રાગની રચના કરે તે વીર્ય શક્તિનું કાર્ય નથી. યહાં જો 47 શક્તિ બતાઈ હૈ ઉસમે તો ઉન શક્તિઓ કા નિર્મલ પરિણમને વાલી એસી 47 શક્તિ લી હૈ. અશુદ્ધતાની રચનામાં જે વીર્ય રોકાઈ રહે એ તો કાયર નપુસકપણું છે. 5 સમવાય મેં તો હમ ઉસકો ભી વીર્ય કહી, વો ઉસકો ભી પુરુષાર્થ કહેંગે. મિથ્યાત્વ વાલી જો પર્યાય હૈ ઉસમે ભી જીવ કા પુરુષાર્થ હૈ, ઉસમે ઉલ્ટા વો મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણમે એસા પુરુષાર્થ ચલ રહા હૈ, પરંતુ ઉસકી યહાં બાત નહીં હૈ. યહાં તો મોક્ષ કે પુરુષાર્થ કો હી સચ્ચા પુરુષાર્થ કહા હૈ, ઓર વહી વીર્ય શક્તિ કા કાર્ય બતાયા હૈ. તો કહેતે હૈ અશુદ્ધતાની રચનામાં જે વીર્ય રોકાઈ રહે વો વીર્ય ગુણ કા ઉલ્ટા પરિણમે ઉંધા કાર્ય ચલ રહા હૈ ને વહાં પર. તો કહેતે એ તો કાયર નપુસકપણું છે. સ્વરૂપની રચના છોડીને એકાંતને એકાંતે રાગને રચે એ તો નપુસકતા છે. સ્વરૂપની રચના નિર્મલ પર્યાય જો હૈ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કી પર્યાય કે બદલે એકાંતે રાગને રચે, જો સમ્યક દૃષ્ટિ ઉસકો ભી રાગ હૈ પર્યાય મેં, ઉસકી બાત યહાં નહીં હૈ. જિસકો નિર્મલ પરિણમન હૈ હી નહીં હૈ ઓર માત્ર રાગ કી હી રચના જો ચલ રહી હૈ, શુભ અશુભ શુભ અશુભ હિ જિસકે પર્યાય મેં બાત ચલ રહી હૈ, એ તો નપુસકતા છે. હું તો રાગનો જાણનારો છું એમ ભૂલીને રાગનો કરનારો થાય એ હતવીર્ય નપુસક છે. દેખો રાગ તો સમય દૃષ્ટિ કો ભી હોગા, અજ્ઞાની કો ભી હોગા. અજ્ઞાની તો અપને કો રાગ કા કરતા માનતા હૈ, और ज्ञानी तो राग का ज्ञाता है, पर्याय में होने वाले राग का उसको ज्ञान है वहां पर। तो कहते हैं राग नो जाननारो छू एम भूली ने जे राग नो करनारो थाय, उसको यहाँ नपुसक कहा है, उसको हतवीर्य कहा। हते ने उसका वीर्य वो नष्ट हो रहा है ना, उसको उसमें रोका ही रहे थे। ते बंधना कारण ने सेवनारो छे अर्थात तेने बंधज थसे। बंधना कारण किसको कहा है यहाँ? बंधना कारण ने सेवनारो छे। हाँ हाँ हाँ, शुभ और अशुभ भाव में ही वो अटक रहा है। बंधना कारण है ना पुण्य पाप, उसकी चर्चा है ना यहाँ पर, वो पुण्य पाप को ही सेवनारा है, तेने ज बंध थसे। तो कोई कहता है कथनचित ज्ञान थी अने कथनचित राग थी एम कहो तो दो पन्ने गए क्या?
दो पन्ने आगे गए।
हाँ
मैं पढ़ता हूँ।
त्यारे केटलक कहे छे,
त्यारे केटलक कहे छे वितरागनी वाणी मा पुण्य भाव बंधनु कारण छे एम अहीं निश्चित ही कह्युं छे, पण बीजे भिन्न साध्य साधन भाव कह्यो छे के नहीं? व्यवहार एटले पुण्य भाव साधन छे एम कह्युं छे के नहीं? बापू ए साधन नो अर्थ शुं? समकीति ने स्वरूप नी निर्मल दृष्टि छे ते निश्चय सम्यक तो छे, अने साथे देवगुरु शास्त्र नी श्रद्धा नो जे राग छे तेने निमित्त जानी नी उपचार थी एटले व्यवहार थी आरोप आपी ने समकित कह्युं छे ए राग खरेखर सम शू ए राग खरेखर समकित छे। क्या कहा? देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि देव गुरु शास्त्र नी श्रद्धानो राग तो कहे शू ए राग खरेखर समकित एटले सम्यक्त्व। ना ए तो चारित्र नो दोष छे, परंतु स्वरूपना दृष्टि ज्ञान रमणता साथे जे राग सहकारी छे निमित्त छे एवं ज्ञान करावा तेने आरोप आपीने व्यवहार थी समकित कह्युं छे। व्यवहार थी समकित ने व्यवहार सम्यक्त्व, व्यवहार समकित छे तो बंधनुं कारण, पण एने उपचार थी मोक्षनो मार्ग कह्यो, पण एनो अर्थ शुं? કે તે મોક્ષનું કારણ નથી। દેખો આપણે કુછ દિન પહેલે યહાં એક વિષય નિકલા થા ને, વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ હૈ ઉસકો કોન સી ગુણ કી પર્યાય હૈ ઉસકા યહાં પૂર્ણ ઉત્તર હૈ। દેખો ક્યા કહેતે એ ખરેખર રાગ ખરેખર સમકિત નથી, ઓર યહાં નીચે લિખા હૈ નીચે સે ઉપર સે ચોથી લાઇન મેં દેખો, परंतु स्वरूपना दृष्टि ज्ञान रमणता साथे जे राग सहकारी छे। अभी आगे चलो, तेने आरोप आपीने व्यवहार थी समकित कह्युं छे एटले व्यवहार सम्यक्त्व कह्युं छे। व्यवहार समकित सम्यक्त्व छे तो बंधनु कारण, यानी बंध का कारण है, यानी वो राग द्वेष के परिणाम है, राग के परिणाम है, અને એને ઉપચારથી મોક્ષ માર્ગ કયો છે। યાની યહાં બાત હમારે કોઈ એ ખ્યાલ મેં લેની હૈ કે વહાં વો સમ્યક્ત્વ કે સાથ સાથ જો રાગ ચલ રહા હૈ વો ભી સચ્ચે દેવગુરુ શાસ્ત્ર કે પ્રતિ કા જો રાગ હૈ ઉસકો યહાં વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ કહા હૈ। ઓર જબ હમ પૂછતે હૈ ભાઈ કોન સે દ્રવ્ય કે કોન સે ગુણ કી પર્યાય હૈ વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ, તો ઇસકે અનુસાર વહ चारित्र गुण की विभाव पर्याय। तो कहते पंते मोक्षनु कारण नथी। अब लास्ट बट वन लाइन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पाण 256 ऊपर आनो अत्यंत स्पष्ट खुलासो करियो छे। त्यां कह्युं छे के जिन मार्ग मा कोई ठिकाने निश्चय ने नी मुख्यता सहित व्याख्यान छे तेने तो सत्यार्थ एम ज छे એમ જાણવું, તથા કોઈ ઠેકાણે વ્યવહારના એની મુખ્યતા સહિત વ્યાખ્યાન છે તેને એમ નથી, પણ નિમિત્તાદિની અપેક્ષા ઉપચાર કર્યો છે એમ જાણવું જરી ઠીક હોય, 5-50 લાખની સંપત્તિ હોય, આબરૂ ઠીક હોય અને પહોળો પહોંચતો ક્ષયક્ષમ હોય, એને ક્ષયક્ષમ કા જ્ઞાન કા ઉઘાણ અધિક હોય, ત્યાં એ બધાના રાગમાં અને રાગની રૂચિમાં તું મરી રહ્યો છે ભાઈ. યાને યહાં ક્યાં કહે થે, થોડે સે આપની બુદ્ધિ હોગી ઓર ઉસકે કારણ ઉસકો પૈસા વગેરે મિલતા હોગા, સમાજ મેં થોડા સા માન સન્માન હોતા હોગા, તો એ પહોળો થઈ જાય એમ. બધાના રાગમાં અને રૂચિમાં, રાગની રૂચિમાં તું મરી રહ્યો છે ભાઈ નાથ, તું અનંત અનંત જ્ઞાન આનંદ અને શાંતિનું પિંડ છે. આવા તારા ત્રિકાળી સતનું લક્ષ્ય નહીં હોવાથી રાગની રૂચિએ તને ઘાયલ કર્યો છે, મારી નાખ્યો છે. જેને રાગની રૂચિ છે તેને શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપની જ આત્માની પ્રતિ અરુચિ છે, દ્વેષ છે. શ્રી આનંદગંજી કહ્યું છે કે દ્વેષ અરોચક ભાવ, યાને દ્વેષ યાને ક્યાં હૈ, જ્યાં રૂચિ નહીં હૈ અરોચ અરુચિ હૈ, એસા જો ભાવ હૈ ઉસકો દ્વેષ કહા હૈ. જેને પરમાત્મ સ્વરૂપ પૂર્ણ આનંદનો નાથ ભગવાન આત્મા રૂચતો નથી અને રાગ રૂચે છે તેને પોતાના આત્મા પ્રત્યે દ્વેષ છે. અંતે કયો દ્વેષ છે તો ભી લીખ દ્યા, અનંતાનુબંધી નો ક્રોધ છે. એને પડખું ફેરવ્યું છે ને સ્વભાવના પડખે રહેવાને બદલે તે રાગના પડખે રહ્યો છે, તેને અહીં આચાર્ય દેવ કહે છે ભાઈ શુભ અને અશુભ બંને ભાવ બંધના કારણ છે અને તેથી ભગવાનની વાણી બંને કર્મોને નિષેધે છે. આવી વાત છે. અભી પીછે જાયંગે, 103 નંબર કા કલેશ દો પન્ને પીછે, 62 પેજ પર હૈ.
કર્મ સર્વમપિ સર્વવિદો યત બંધ સાધનમુષંત્ય વિશેષાત તેન સર્વમપિ તત પ્રતિષિદ્ધમ જ્ઞાનમેવ વિહિતમ શિવ હેતુ. દેખો ઇસકા ભાવાર્થ શ્લોકાર્થ દેખેંગે નીચે, ઇસી પૃષ્ઠ પર નીચે. યદ યને કારણ કે સર્વવિદ સર્વજ્ઞ દેવ, સર્વવિદ કહા એને સબ કુછ જાણને વાલે, કેવલ જ્ઞાની કે લીએ સર્વવિદ શબ્દ આતા હૈ, એને સર્વજ્ઞ દેવો. સર્વમપિ કર્મ સમસ્ત કર્મને એટલે શુભ તેમજ અશુભ કર્મને, અવિશેષાત અવિશેષપણે, બંધ સાધનમ બંધનું સાધન એટલે કારણ, ઉષંતિ એટલે કહે છે તેન, તેથી એમ સિદ્ધ થયું કે સર્વજ્ઞ દેવોએ સર્વમપી તત્ પ્રતિષિદ્ધમ સમસ્ત કર્મને નિષેધ્યું છે અને જ્ઞાનમ એવ શિવ હેતુ વિહિતમ, જ્ઞાનને જ મોક્ષનું કારણ ફરમાવ્યું છે.
દેખો યહાં મૂળ વાત તો યે હૈ, યહાં તો સમજા રહે કે જિનેન્દ્ર ભગવાન કા એસા કહેના હૈ, ક્યા કહેના હૈ સાહેબ, તો જ્ઞાનમ એવ જ્ઞાન હી શિવ હેતુ હુ વિહિતમ, યાને જ્ઞાન હી શિવ હેતુ, એને મોક્ષ કા હેતુ હૈ એસા ઉન્હોને કહા હૈ. અબ ચલો જહાં હમ આયે થે, હા જી 68, યદ અભી યહાં તો સિર્ફ હમ ગુજરાતી પઢ લેતે હૈ, કારણ કે સર્વજ્ઞ દેવો સમસ્ત શુભ તેમજ અશુભ કર્મને, यहाँ कर्म कहते ही यहाँ जीव के परिणामों की बात, बहुत बार ऐसा हमारा घोटाला हो जाता है कि कर्म तो कह रहे लेकिन ये कौन से द्रव्य कर्म की बात है क्या? हाँ, लेकिन ये भाव कर्म की बात है कि उसके कारण बंधन हो रहा है ना भाई, तो बंधन क्या, कर्म के कारण से कर्म थोड़ी बंधेगा, ख्याल में है ना? तो कहते हैं कारण के सर्वज्ञ देवो समस्त कर्म ने अविशेषपणे बंधनु कारण एटले साधन कहे छे। शू कहूं के दयादान व्रत तप भक्ति इत्यादि नो शुभ भाव होय, के हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इत्यादि नो अशुभ भाव होय, बन्ने भाव विभाव भाव छे। अने सर्वज्ञ देवो ए एटले जिन भगवंतो ए बन्ने ने अविशेषपणे एटले बेमा काई फेर पाड्या विना एक सरखा बंधन ना कारण साधन एटले कारण कहे छे। कोने? बन्ने भाव ने हो, बेवमाथी एक एक धर्म के धर्मनु साधन नथी, पन बन्ने समान पनेज बंधना साधन छे। समस्त कर्म एम कहूं छे ने, एटले के शुभ ने अशुभ बन्ने कर्म ने सर्वज्ञ भगवाने अविशेषपणे बंधना कारण कह्या छे। बंधनी अपेक्षाएं बन्ने सरखा छे, बेमा काई फेर नथी। आवी बात आखरी पड़े ने मानस ने, आखरी बात पड़े छे मानस ने, केम के व्यवहार करता करता निश्चित छे एम माने छे ने। पण भाई तारी ए मान्यता सर्वज्ञनी आज्ञा थी बहार छे। व्यवहार करता निश्चय प्रकटे ए सर्वज्ञनी आज्ञा नथी। स्वामी जी कई बार ऐसा कहते थे कि आ बधा शास्त्रों कल्पित छे। कोना? हाँ, तो कहते कि ए सर्वज्ञनी आज्ञा नथी। आचार्य अमृतचंद्र देवे सर्वविध शब्द मूकीने सर्वज्ञ देवनी साक्षी आपी छे। आहा हा, एक समय में त्रण का त्रण लोक ने जाननारु जेनु अनंत ज्ञान छे, जेने अनंत आनंदनु वेदन छे, अने जेने अनंत वीर स्वरूपनी परिपूर्ण रचना करी रह्यु छे, ते सर्वज्ञ देव छे। आवा सर्वज्ञ देव पुण्य पाप ना बन्ने भाव ने अविशेषपणे बंधना साधन कहे छे। एटले जेम विषय कषायना भाव बंधनु कारण छे, तेम व्रत तपशील ब्रह्मचर्य इत्यादि शुभ भाव पण बंधनु कारण छे। केम के बन्ने कर्म चेतना छे। हवे कहे छे तेन तेथी एम सिद्ध थयुं के सर्वज्ञ देवोए सर्वमपि तत् प्रतिषिद्धम समस्त कर्मने निषेध्यु छे, अने ज्ञानम एव शिव हेतु विहितम ज्ञान ने ज मोक्षनु कारण फरमायवु छे। लियो शू बाकी रह्यु? समस्त कर्मने एटले शुभ ने अशुभ रूप सर्व भावोनो सर्वज्ञ देवे निषेध कर्यो छे, अने एक ज्ञान ने ज मोक्षनु कारण फरमायवु छे। मतलब के पुण्य पापना विकल्पती रहित निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मानी सेवा रमणता लीनता, सेवा का अर्थ क्या किया? रमणता लीनता अने एकाग्रता करवानु फरमायवु छे, केम के ते एक ज मोक्षनु कारण छे। यानी उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ज्ञानम एव यानी ज्ञान ही शिव हेतु हु, यानी मोक्ष का एक ही कारण है और वह ज्ञान है। किसका ज्ञान? स्व का। साधारण प्राणी ने न बेसे एटले आचार्य देवे सर्वज्ञ नो आधार आप्यो छे, परंतु अत्यारे घणी बधी गड़बड़ थई गई छे। व्रत करो, तप करो, भक्ति करो, यात्रा करो, उपवास करो इत्यादि एम करता करता मोक्ष मार्गाने मोक्ष थशे एम केटला कहे छे। पण भाई ए बधा शुभ भाव छे। એ બધા શુભ ભાવ છે। લાસ્ટ પેરેગ્રાફ
એ બધા શુભ ભાવ છે। હા, એને સર્વજ્ઞ ભગવાને બંધનું કારણ કહ્યું છે। રાગ અશુભ હો કે શુભ, બંને કર્મચેતના છે, વિકારી કાર્ય છે। ભગવાન, તારો માર્ગ તો એ જ્ઞાન ચેતના છે।
કર્મ ચેતના ક્યાં હૈ માલુમ હૈ ના? કર્મ ચેતના છે એસા લિખા હૈ। હા, આપ બતાવો જો।
દેખો, કર્મ ચેતના હૈ ને, ચેતના લિખા ઉસમે અપને કો કૈસા અનુભવ કર રહા હૈ, રાગી દ્વેષી, યાને રાગ ઓર જો કુછ શુભ અશુભ રાગ હૈ ઉસકે સાથ જો એકત્વ કર દેતા હૈ, વો મેરા હૈ, કરને જૈસા હૈ માનતા હૈ, તો ઉસકે કર્મ ચેતના કહીએ, ક્યોંકિ ઉસને અપને કો હી રાગી દ્વેષી માન લિયા હૈ। परंतु राग से जो अपना भिन्न पहचानता है अपने आप को, ज्ञान में जो एकाग्र है, ज्ञान में जिसकी एकता है, और राग से जिसको भिन्नत्व है, उसको राग होते हुए भी वो ज्ञान चेतना वाला है, उसके ज्ञान चेतना है। पर्याय की अपेक्षा राग का सद्भाव है वहाँ पर, फिर भी उसके राग में एकत्व बुद्धि नहीं है, उठने वाले राग को वो भिन्न जानता है, तो उसके ज्ञान चेतना विद्यमान है।
देखो, अपने को कभी कभी ऐसा लगता है ये कर्म चेतने है, कर्म की कोई बात होगी, ये तो भाव कर्म रूप जो उस जीव के परिणाम है चेतन है ना, तो उस रूप स्वयं को मानना वो कर्म चेतना, और कर्म फल चेतना है ना, उसके बारे में दुखी या मैं सुखी,
अपने आप को सुखी दुखी जानता है, अनुभवता है, तो उसको कर्म फल चेतना का। अब उसकी बात यहाँ कर्म चेतना और ज्ञान चेतना दोनों ही बातें ली है।
हाँ।
तो कहते तारो मार्ग तो एक ज्ञान चेतना है। तारो मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग क्या है? तो ज्ञान चेतना ही मोक्ष का मार्ग है। तो राग से जब भेद ज्ञान करेगा तभी तो उसका ज्ञान चेतना होगी और तभी मोक्ष का मार्ग शुरू हो जाएगा। तो कहते ज्ञानम एव विहितम शिव हेतु एम चौथा पदमा अही पूरी चौखवट करी दीदी छे। चौथा पद यानी क्या? श्लोक जो आया था उसके चौथा जो चरण है, चौथी लाइन है, उसको चौथा पद का। ज्ञान नेज एटले के ज्ञान स्वरूपी भगवान ज्ञायक नेज मोक्ष नो हेतु कहो छे। ये पूरे द्रव्य को ही ले लिया यहाँ, ज्ञायक भगवान को। तो कहते कथनचित ज्ञान थी यानी कथनचित राग थी के एम कहो तो पुण्य को भी ले लो ना साथ में, ऐसा कहते हैं ભાઈ। કથનચિત જ્ઞાન થી અને કથનચિત રાગ થી મોક્ષ થાય એવો સ્યાદવાદ વિતરાગ ના શાસન માં નથી। એ ઇસકો સ્યાદવાદ હી નહીં કહેંગે, હે? એ તો ઝૂઠા વાદ હો ગયા। અહીં તો કહે છે કે પ્રભુ, તો કૈસા સ્યાદવાદ હોગા? હા, એને ज्ञान से ही होगा, राग से नहीं होगा, ऐसा से आधवार है, ऐसी अस्थि नास्ती होगी, ऐसा अनेकांत होगा। अही तो कहे छे के प्रभु, तू ज्ञान छो, तारा ज्ञान स्वरूप मा पुण्य पाप ना विकल्प नो अभाव छे। पर्याय में होने पर भी ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान स्वरूप में पुण्य और पाप का अभाव है। आवा निर्भेद નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્મામાં એકાગ્રતા કરીને જ્ઞાન માત્ર ભાવનો અનુભવ કરવો। દેખો, અભી જો પર્યાય મેં જો કુછ રાગ દ્વેષ ઉઠતે ઉસસે તો ભિન્નતા કરકે ઉસકા લક્ષ્ય છોડ કે જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા મેં જબ એકાગ્રતા કરેગા तो उसका ज्ञान मात्र भावनो अनुभव करवो, चैतन्य रसनो, वीतराग रसनो, शांत रसनो अनुभव करवो, ये मोक्षनु कारण छे। ये पूरा ही मार्ग बता दिया क्या करना है, तो एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। किस में एकाग्रता करनी है, तो ज्ञान स्वभाव में। राग नो अनुभव तो आकुलतामय दुख ने बंध नु कारण छे, संसार नु कारण छे। कहेंगे राग का अभाव तो ऊपर के 12वें गुणस्थान में होगा, तब तक क्या करना है? तो राग है तो उसकी आकुलता भी है कि नहीं है? तो राग का अनुभव करना के ज्ञान का अनुभव करना, ये अपने हाथ की बात है। हम तो उठते हुए राग में इतने एक में खो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, तो भी उसका लक्ष्य छोड़कर ज्ञान स्वभाव ही अपने आप में लीन हो जाना, उसी में एकाग्र हो जाना। देखो क्या कहते कि तारा ज्ञान स्वरूप मां पुण्य पाप ना विकल्प नो अभाव छे। पुण्य पाप के विकल्प उठते है पर्याय में, फिर भी उसी समय स्वभाव तो निर्भेल है, निराकुल है, तो उसमें तो विकल्प का अभाव है। आवा निर्भेल निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप आत्मा मां एकाग्रता करीने, एकाग्रता ने अभी ज्ञान का लक्ष्य कहा, ये जो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है उसी में अपना ज्ञान लगाना है। पर्याय के जो पुण्य पाप के विकल्प है उसका लक्ष्य छोड़कर, जो निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसमें एकाग्रता करके ज्ञान मात्र भावनो अनुभव करवो, चैतन्य रसनो, वितराग रसनो, शांत रसनो अनुभव करवो, ए मोक्षनु कारण छे। रागनो अनुभव तो आकुलतामय दुख अने बंधनु कारण छे, संसारनु कारण छे। ए रागनो अनुभव एने वो कर्म चेतना की बात आ गई। तेथी सर्व रागनो निषेध करीने भगवान एम कहे छे कि तू ज्ञान ने आनंदना अनुभवना रसनु सेवन कर। ये कहीं बाहर से नहीं लाना है, स्वभाव में पड़ा है, उसकी एकाग्रता उसका लक्ष्य करने से वो पर्याय में प्रकट होगा, तो उसका अनुभव कर, ऐसा कहते हैं। ज्ञान स्वरूप ना अनुभव नो रस ए अनाकुल आनंद अने वीतरागी शांति नो रस छे, अने एज एक मोक्ष नु कारण छे, एम सर्वज्ञ देवे फरमायु छे। हवे आमा व्यवहार साधक अने निश्चय साध्य एवा प्रश्न ने क्या अवकाश छे, यानी वहाँ कोई शुभ कार्य है, शुभ राग है, उसको कारण कहा है और उसके कारण निश्चय प्रकटेगा, ऐसा तो कहीं आया नहीं है। उल्टा तो उसके पुण्य पाप के विकल्प से रहित ऐसा जो स्वभाव है उसमें एकाग्रता करने की बात की है। तो यहाँ जो पर्याय वाला जो राग है वहाँ पुण्य भाव है, उसको साधक तो कहा ही नहीं है। तो व्यवहार साधक और निश्चय साध्य ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता यहाँ। कोई ठिकाने व्यवहार ने साधक कहो छे, ए तो साधक दशा मां साधक पर्याय एटले शुद्ध रत्नत्रय पर्याय नी साथे साथे व्यवहार एटले शुभराग केवो होय छे तेनू त्यां ज्ञान करायु छे। कहीं कहीं शास्त्र में आता है व्यवहार साधन है और निश्चय उसका साध्य है, तो वहां वे क्या कहना चाहते हैं कि जहाँ निश्चय है उसके साथ कैसे कैसे राग वहाँ मौजूद है उसका ज्ञान कराने के लिए वहाँ भाषा तो ऐसी है कि व्यवहार को तो साधन कहा है, परंतु वो तो उपचार का कथन है। निश्चय है तो उसके साथ वाले राग को व्यवहार कह देते हैं। अहीं तो आ एकज बात छे के ज्ञानम एव एव लिखा ना, ज्ञान ही विहितम शिव हेतु। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप मां मशगूल थई ने आनंद केली करे ए एकज मोक्षनु कारण कहूं छे। इन्हें ज्ञान जो पर्याय में ज्ञान जानना 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 चल रहा है, अब उस ज्ञान को कहां लगाया? तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप मां मशगूल थई ने, मशगूल थईने ने उसी को जानते रहने में, उसी में लीन होना, उसी में एकाग्र होना, उसको कहा मशगूल होना। आनंद के लिए करे तो इतना डिफिकल्ट कार्य करना नहीं कहते, वो तो आनंद के अनुभूति होती, वहाँ आनंद की केली कहते, सहज में आनंद उत्पन्न होता है,
रमत
रमत में आनंद की केली करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, ए एकज मोक्ष नु कारण कहूं छे। देखो मोक्ष आनंद स्वरूप है, कितना आनंद है वहां पर मोक्ष पर्याय में, कितना सुख है, हाँ अनंत सुख है। तो मोक्ष मार्ग थोड़ा सा दुख रूप होगा ना, लोग कहते थोड़ा दुख सहन करो बाद में आनंद ही आनंद होगा, ऐसी बात नहीं है। मोक्ष मार्ग भी आनंद स्वरूप है, इसलिए वहां कहा कि आनंद के लिए कहा ना कि चैतन्य स्वरूप मां मशगूल थई ने आनंद के लिए करे, ए एकज मोक्ष नु कारण कहू छे। मोक्ष नु कारण कहो, मोक्ष का मार्ग कहो, एक ही बात है। तो अपने चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होने पर आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति करते करते मोक्ष प्राप्त होता है, ये मोक्ष का कारण कहा है उसको। हाँ हाँ, वीतराग सर्वज्ञ देव जैन परमेश्वर ने आज्ञा शू छे ए लोगों ने खबर नहीं, शानो निषेध कर्यो छे अने शू कर्तव्य छे एनी लोगों ने खबर नहीं। बधा शास्त्रों में, बधा एटले चारे अनुयोग में, प्रथमानुयोग हो के कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो के द्रव्यानुयोग हो, ए सर्व मा एक ज्ञान ज मोक्षनु कारण छे एम फरमायू छे। लोगों को लगता है चरणानुयोग है तो वहाँ कुछ आचरण से मोक्ष होता होगा ऐसे लिखा है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चरणानुयोग का ग्रंथ हम निकाल के देखते हैं, सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की बात से उठाया है। रत्नकरण शावकाचार्य में भी पहला जो अधिकार है ना वो सम्यक दर्शन अधिकार है, और दूसरा अधिकार कौन सा है, सम्यक ज्ञान अधिकार है, और फिर सम्यक चारित्र। जिसको ऐसा है उसमें अधिकाधिक लीनता होने पर ऊपर की भूमिका में उसके कैसे आचरण होते हैं उसका वहां वर्णन है। तो कहते कोई भी अनुयोग हो ए सर्व मां एक ज्ञान ज मोक्ष नु कारण छे एम फरमायु छे। हा हा, शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा छे, एमाज एकाग्र थई एना श्रद्धान ज्ञान ने रमणता प्रकट करवा ए एकज मोक्षनो मार्ग छे। श्रद्धा करने याने भगवान ने बताया हमने विश्वास किया, वो श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा याने अपने में रुचि होना, हम देखते ना समय दर्शन किसको कहा है, चढ़ाला में आता है ना, परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। सम्यक तो कहो श्रद्धा कहो एक ही बात है। तो ये जो वे तो बहुत समय सार में तो पूरा वही आता है ना, दृष्टि का विषय जिसको कहा है, उसमें स्वपना स्थापित करना ये श्रद्धा का कार्य है। श्रद्धा किसी न किसी में स्व स्थापित करती है। बहिरात्मा अवस्था में आत्मा छोड़कर बाह्य पदार्थों में स्व स्थापित किया है, शरीर में है, राग में है, उसको अपना मान लिया ना, उसमें स्व स्थापित किया है। जितना स्व भगवान ने बताया है त्रिकाली जो ध्रुव तत्व है उसमें स्वपना स्थापित करना, उसको यहाँ श्रद्धा कहा। तो कहते हैं शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा छे, जिसको यहाँ भगवान आत्मा कहा है वो तो त्रिकाली शुद्ध स्वरूप जो है उसको यहाँ भगवान आत्मा कहा है। ये शुद्ध कहाँ है हमारा, ऐसा किसी का प्रश्न हो सकता है ना, शुद्ध कहाँ है, उसका लक्ष्य कैसे करना, आप क्या कहते हो, यहाँ क्या कहा, शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा है और उसमें एकाग्र होना है, तो शुद्ध कहाँ है, वो किसको शुद्ध कहा है, हाँ 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 पूरे आत्मा को शुद्ध का, परंतु अभी पर्याय में अशुद्धता है ना, तो पूरे आत्मा को शुद्ध कैसे कहा, जोर से, हाँ त्रिकाली ध्रुव आत्मा को, अभी पर्याय को गौण करके, एकल देखने को बोला था ना कोई जीव क्या मानते हैं, अरे मैं तो शुद्ध ही हूँ शुद्ध हूँ, पर्याय में जो अशुद्धता है उसका स्वीकार ही नहीं, और मैं शुद्ध हूँ कहता है, तो उसको वहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पूछा है कि द्रव्य तो शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है, तो अशुद्ध पर्याय भी है ना, अनादि अनंत द्रव्य जब हम कहते हैं, जैसे द्रव्य किसे कहना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो क्या उतनी ही परिभाषा है क्या? तो हमने तो गुण पर्यायवत द्रव्यम सीखा है, तो अनादि से लेकर अनंत काल तक की इतने पर्यायों का समुदाय को भी द्रव्य कहा है वहां। तो द्रव्य क्या है? शुद्ध, क्योंकि अशुद्ध पर्याय थी पहले, बाद में शुद्ध हो गई, तो ये पूरा समुदाय मिलकर द्रव्य हुआ है। द्रव्य तो कहां से कहां तक फैला है मिलिंद भाई? काल उसकी चौथी डायमेंशन है, तो द्रव्य का काल कितना है? तो पूरा अनादि से अनंत काल का द्रव्य हम ख्याल में लेंगे तो ही हमें द्रव्य का पूरा ज्ञान हुआ है, जैसे केवल ज्ञानी भगवान जानते। एक समय में सभी द्रव्यों के त्रिकालवर्ती सभी पर्यायों के साथ जानते हैं ना, तो प्रत्येक द्रव्य कितना है बड़ा, तो अनादि से अनंत काल तक फैला हुआ है, उसको क्या कहा है शास्त्र में? ऊर्ध्व प्रचय। और भी एक नाम आया था प्रवचन सार में, तिर्यक प्रचय, तो गुणों की अपेक्षा हम कहेंगे, भाव की अपेक्षा, ऊर्ध्व प्रचय कहो, या दूसरा नाम क्या आया था उसको, आयत सामान्य समुदाय ऐसा आया था ना पूरा, हाँ आयत ने लंबाई उसकी, ये सदृश से तो वो अलग बात है उसकी, वो तो महासत्ता अवंतर सत्ता का था नाम, ये 93 गाथा में आएगा कहीं, तो हाँ वहां पर होगा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, तो यहाँ जो शुद्ध कहा है वो सामान्य को शुद्ध कहा है, यानी सामान्य कहो त्रिकाली कहो एक ही बात है ना, परंतु तो ये अपने ख्याल में, क्योंकि हम इसको सुन सुनकर इतने आ रहे, तो शुद्ध आत्मा की एकाग्रता करना है, इन्हें क्या करना, तो पर्यायों को विशेषों को गौण करके देखो, पहले तो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य है उसको तो हमने जाना है आगम के द्वारा, अब उन विशेषों को गौण करके सामान्य को मुख्य करके उसको लक्ष्य में लेना है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, तो हम कहते हैं वो शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा में लीन होना, उसकी एकाग्रता करना है, क्योंकि पर्याय तो अलग अलग होती है, कभी शुद्ध है कभी अशुद्ध है, वो भी चेंज होती रहती है, पर्याय का लक्ष्य करने से क्या होगा, विकल्प खड़े हो जाएंगे, राग उत्पन्न होगा, और जो सामान्य है वो तो एक सदरिखा एक सदृश है ना त्रिकाली, जो हम नयों में भी जो हम बात देख रहे हैं, अखंड ऐसा धर्मी जो है पूरा द्रव्य, उसको हम ख्याल में लेते हैं तो वहां विकल्प उत्पन्न नहीं होते, राग उत्पन्न नहीं होता है, और अपने ये इसी को चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा कहा, एमाज एकाग्र थई एना श्रद्धान ज्ञान ने रमणता प्रकट करवा, ए एकज मोक्ष नो मार्ग छे। ज्ञान स्वरूप तो पोते त्रिकाल छे, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, कब से, अनादिकाल से, और अनंत काल तक ऐसा ही रहूंगा, वर्तमान मां ए त्रिकाली ज्ञान स्वरूप मां एकाग्रता करवी, एवो ज्ञानमेव नो अर्थ छे। समझानु काय, वर्तमान पर्याय जो है ज्ञान का अपना जो उपयोग है वो किसमें लगाना है, त्रिकाली ज्ञान स्वरूप मां उसकी एकाग्रता करनी, ज्ञानमेव कहूं ए वर्तमान पर्याय नी, शुद्ध रत्नत्रय रूप पर्याय नी वाच छे, यहां पर्याय की बात है, ज्ञान मेव कहा ना, ज्ञान ही क्या कहा है, विहितम कहा ना, ज्ञान मेव विहितम शिव हेतु, ज्ञान को ही शिव का हेतु यानी मोक्ष का हेतु बताया, मोक्ष का कारण बताया है, ये ज्ञान कौन सी, ये पर्याय की बात है, कौन सा ज्ञान, जो अंदर में एकाग्र हुआ है वो ज्ञान, यानी ज्ञान की एकाग्रता से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये बात यहां कहना चाहते, ज्ञानमेव कहीं वर्तमान पर्याय नहीं, शुद्ध रत्नत्रय रूप पर्याय नहीं वात छे। भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी वस्तु छे, तेमा एकाग्रता करवी ए मोक्षनु कारण छे। देखो मोक्ष का कारण कहो या सम्यक दर्शन का कारण कहो, क्या है? त्रिकाली में एकाग्रता करना। इतना आसान में आसान है ना तरीका। तो हम तो कोई ना कोई शुभ भाव करने से कैसे प्रकार से चिंतन विकल्प करे तो आत्मा की अनुभूति होगी, ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अभी चिंतन कैसे करना तो आत्मा की अनुभूति होगी। तो चिंतन ये क्या है? विकल्प है। विकल्प क्या है? राग है। तो कौन सा राग करने से आत्मा की उपलब्धि होगी? तो कहते हैं क्या, किसमें एकाग्रता करनी है? आत्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ज्ञान स्वभावी वस्तु है, तेमा एकाग्रता करवी ए मोक्षनु कारण छे। अशुभनी जेम शुभने पन भगवाने धर्मना कारण तरीके निषेधियो छे। अब जो आत्मा संबंधी विकल्प है वो शुभ है कि अशुभ है? शुभ है कि शुद्ध है? हाँ वीरेश भाई आप क्या कहते? विकल्प है ना, वो शुभ परिणाम है। तो भगवान ने तो उसका निषेध किया, वो शुभ से कोई आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। कहते हैं अशुभ नी जेम शुभ ने पन भगवाने धर्मना कारण तरीके निषेध हो। धर्म कहो, सम्यक दर्शन कहो, मुक्ति कहो, तो उसका कारण ये विकल्प नहीं हो सकता। केम के ए तो बंधनुज कारण एटले साधन छे। स्वरूपनु भान कर्या विना एकांते व्यवहारनो शुभराग करता करता निश्चय थई जसे, एवी जेने हट छे ते भारे भ्रमणामां छे। छोटी भ्रमणा नहीं हो, बहुत बड़ी भ्रमणा, बहुत बड़ी भूल है। क्या, कौन सी भूल है? स्वरूप के भान बिना। ये स्वरूप का जिसे भान है उसे भी शुभराग होगे, विकल्प वाली भूमिका भी होगी, अन्य भी व्रत तप आदि होगे, परंतु जिसको स्वरूप का भान नहीं है और अकेले व्यवहार का शुभराग करते करते ही निश्चय धर्म होगा, ऐसी जिसकी मान्यता है, ऐसा जिसको हट है, वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। क्योंकि आत्मा के भान करने की उसने कोई जरूरत नहीं मानी और अभी वो व्रत आदि आचरण कर रहा है, तो अभी उसको क्या जरूरत रही आत्मा का भान करने की, क्योंकि उसने उसके बिगैर है मोक्ष का मार्ग मान लिया। तो कहते वो ते भारे भ्रमणा माच।
ये अपने पर उल्टा आरोप आता था ना कि आप लोग बहुत हटिए हैं, अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं है, हा? तो यहाँ तो स्वामी जी उल्टा बता रहे हैं। एवो जेने हट छे, सु कयो हट छे? शुभ राग करता करता निश्चय थशे। एवो जेने हट छे ते भारे भ्रमणा मां छे। क्या कह रहे हैं? ऐसा ही है ना कि लोग हमको पागल कहते हैं, हा? क्यों, क्या है? दिन रात कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, बस आत्मा 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 करते रहो, ऐसा करने से कुछ होने वाला है? उससे अच्छा दो दिन अपना दो घंटा दुकान में बैठो, धंधे में बैठो, तो कुछ पैसा मिलेगा। तो वो अपने को पागल मानते हैं और हम उनको पागल मानते हैं, क्योंकि जो करना है वो छोड़ के अन्य कुछ करने में ये लोग मशगूल हो गए हैं। वैसे यहाँ पर वो लोग अपने को कह रहे क्या कि तुम्हें बहु हटी छो, हटी छो। और यहाँ स्वामी जी कह रहे कि ये लोग हटी है, अब निर्णय लेना भैया अपने आप। ख्याल में चलो यहीं रुकते हैं हम।
जानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो।